पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 9
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाऊणं नम्योऽनन्तजिनं अनन्तनाणेन दीप्तसौवर्थं कम्मपदे सविहस्तिम्
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतीश आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सातवीं पुस्तक जो प्रदेश भक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 32 पर आ गए हैं। 32 यहाँ अभी हम अंतरकाल की प्ररूपणा देख रहे थे। उत्कृष्ट के बाद अभी जघन्य का प्रकरण चलेगा यहाँ पर। उसमें हमने ओग से देखा था और उसके विशेषार्थ भी देखा था। अब आदेश की अपेक्षा से जघन्य का अंतर हम देखेंगे। नीचे से दूसरी लाइन, आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य, रति, अरति और शोक की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है, यानी दोबारा जघन्य नहीं हो सकता, परंतु अजघन्य में एक समय के लिए जघन्य होकर फिर अजघन्य हो सकता है।
ये जघन्य तो पहले समय में होगा नारकियों में।
हाँ, ये नारकियों में, परंतु सातवें नरक में मिथ्यात्व में हो सकता है ना। सातवें नरक में आया है, सम्यक तो प्राप्त किया है और लास्ट में जाके फिर मिथ्यात्व में आया है। देना छठवी पुस्तक आपके हाथ में भी एक देना। जघन्य
देखता है ना,
जघन्य लास्ट में नारकियों में जघन्य।
ये तो शपित कर्म और सिक्का ही होगा ना।
देखो, सामान्यतः जघन्य कहा होता है तो क्षपणा में होता है, परंतु हमें नारकियों में जघन्य देखना है। आदेश से नारकियों में 389 पीस। पढ़ रही हूँ मैं, देखो 389। नीचे है, बीच में, ऊपर से दूसरी लाइन, आदेश से नारकियों में मिला ना, छठवीं पुस्तक में मैं पढ़ रही हूँ। नारकियों में मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति किसके होती है, ये नारकी इन जनरल बात करेंगे, जहाँ एप्लीकेबल होगा वहां बताएंगे। जो क्षपित कर्मांशिक जीव विपरीत जाकर है, अभी उसने इतने बार सम्यक तो प्राप्त किया, संयम प्राप्त किया, अभी फिर परिणाम उल्टे हो गए। दीर्घ आयु वाले नारकियों में उत्पन्न हुआ, अतिशीघ्र सब पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ, सर्व विशुद्ध होकर सम्यक को प्राप्त हुआ, यानी विशुद्धि लब्धि वगैरह बतानी उनको, पुनः अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दीर्घ आयु स्थिति काल तक सम्यक्त्व का पालन कर अनंतर समय में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। लास्ट में जाके उसने मिथ्यात्व में गया है, तब उसके जघन्य हो गए, क्योंकि पहले क्षपित कर्मांशिक था, यहाँ आने पर सम्यक्त्व प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, दोनों में स्थिति कांडक वगैरह सब हो गया है, और फिर एक 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 निषेक गलता चला जाएगा 33 सागर में कुछ कम, जब मिथ्यात्व में जाएगा तो जाने के पहले वाला लेना समय, सम्यक होगा अंतिम समय लेना, क्योंकि मिथ्यात्व में जाने पर फिर बंद होगा तो फिर संचय अधिक होगा उसका, और फिर बाद में अंतर्मूर्त उसका शेष है, तो अजगण्य में अंतर पड़ा एक समय का, क्योंकि वापस एक बार जगन्य होकर फिर जगन्य दोबारा होने की कोई बात है ही नहीं उसमें। हाँ, ये सातवें नरक में घटित होता है। देखो, और स्त्री वेद नपुंसक वेद में ऐसा लेना है, वही जीव अब मिथ्यात्व में गया है और अपने प्रतिपक्ष का बंद कर रहा है,
तो वहाँ मिथ्यात्व में जाके अंतर्मूर्त,
तो अंतर्मूर्त तक प्रतिपक्ष का बंद करता है, तो उसके निषेक और गिरेगा, तो उसका एक अंतर्मूर्त जाकर उसका जगन्य हो जाएगा, मिथ्यात्व में जाने के अंतर्मूर्त के पश्चात उसका जगन्य होगा।
यहाँ पे तीनों वेद साथ पे लिए हैं, पुरुष वेद भी लिया है।
हाँ, यहाँ पुरुष वेद का नारकियों में यहाँ कुछ अलग बताते हैं तो देखेंगे, यहाँ तो स्त्री वेद और नपुंसक वेद दोनों का ही स्वामित्व ऐसा इसी प्रकार बताया था, अब नारकियों में पुरुष वेद देखना। पुरुष वेद का नारकियों में उत्पन्न होने पर अंतर्मूर्त के बाद लेना, पहले समय लेना, हास्य रति वगैरह जो है उसकी भी बात ऐसी लेनी है। देखो, हम अभी जो पढ़ रहे थे 32 पृष्ठ नीचे से दूसरी लाइन, मिथ्यात्व का जगन्य कब है?
अंतर्मूर्त पहले,
तो सातवें नरक में लास्ट में एक अंतर्मूर्त पहले, यानी क्षपित कर्मांशिक सातवें नरक में गया, यानी सम्यक्त्व और अनंतानुबंधी की विषय योजना। और आयु में एक अंतर्मूर्त बाकी, तब तब मिथ्यात्व में
समय से।
हाँ, तो सम्यक्त्व का अंतिम समय वो मिथ्यात्व का जगन्य है, और दो वेदों के लिए
अंतर्मूर्त,
एक अंतर्मूर्त और ज्यादा। स्त्री वेद और नपुंसक वेद के लिए एक अंतर्मूर्त अधिक, अब यहाँ ये मिथ्यात्व तीन वेद में से दो वेद हमने देखे, पुरुष वेद हास्य रति अरति और शोक के लिए पहले से वो क्षपित वाला आया है, और यहाँ अंतर्मूर्त के पश्चात
दो वेद के लिए,
पुरुष वेद के लिए भी वो जगन्य लेकर आया है नरक में उत्पन्न होने के, पहले समय में नहीं लेना अंतर्मूर्त, क्योंकि प्रतिपक्ष का बंद कर रहा है, ऐसा जी लेना, इसलिए इनके लिए अजगण्य का अंतर्मूर्त होगा, जो एक अंतर्मूर्त बाद होता है और मिथ्यात्व उसके पश्चात फिर अंतर्मूर्त के लिए अजगण्य होता है, इसलिए इन प्रकृतियों में अजगण्य का अंतर एक समय होता है।
ये पुरुष वेद का भी अंतर्मूर्त पश्चात ही लेने का,
पश्चात लेना, इसलिए जब जगन्य होगा उसके पहले वाला अंतर्मूर्त क्या कहेंगे, वो अजगण्य है, एक समय के लिए जगन्य हुआ फिर अजगण्य चालू हो गया, तो अजगण्य का अंतर हुआ एक समय के लिए। हमने अजगण्य का काल देखा था, काल में यही बात देखी थी, अब हम अंतर में एक समय घटित कर रहे हैं। इसी में हमने काल देखा होगा, देखो अभी तो हम अंतर देख रहे हैं ना, उत्कृष्ट का जो काल हमने नरक में देखा था,
एक समय के लिए होता है ना उत्कृष्ट का तो।
काल अनुत्कृष्ट का, सॉरी
अजगण्य का काल,
उत्कृष्ट नहीं, अजगण्य जघन्य कहना है मुझे, मैं गलत से आदेश में अठारह पेज पर निकालना देखो यही बात यहाँ अपनी हो गई है पेज 18 नीचे विशेषार्थ में देखो यह आदेश से पहले देख लो 26 नंबर का पॉइंट मिला 18 पृष्ठ पर 26 नंबर का पॉइंट आदेश से नारकियों में मिथ्यात्व और सात नौ कषायों की जघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट का लेख समय है हमें अजघन्य का देखना था अजघन्य का जघन्य काल अंतर्मूर्त है अब नीचे विशेषार्थ में आना उसी पेज पर मिथ्यात्व स्त्रीवेद और नपुसक वेद की जघन्य प्रदेश विभक्ति नारक पर्याय में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर हो यह भी संभव है इसके बाद इनकी वहां अंतर्मूर्त काल तक अजघन्य प्रदेश विभक्ति होती है ये जो अभी हमने सातवें नरक में अंत में घटित किया उसकी बात अभी अन्य कर्मों के लिए बता रहे आगे उसी पेज पर तथा क्षपित कर्मांश विधि से आकर नरक में उत्पन्न हुए जिसे अंतर्मूर्त काल हो जाता है उसके पुरुषवेद हास्य रति अरति और शोक की जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है और इससे पूर्व अंतर्मूर्त काल तक अजघन्य प्रदेश विभक्ति रहती है ये बात ख्याल में आई अजघन्य है एक समय के लिए जघन्य हुई फिर अजघन्य तो वहां भी एक समय घटित होगा अजघन्य का अंतर प्रेरणा बिन ख्याल में आती बात तो इसी पुस्तक में हमें वो रेफरेंस मिला 18 नंबर पृष्ठ यही बात यहाँ हम 33 पेज पर 33 पृष्ठ पर आते हैं अभी हम 12 कषाय भय और जुगुप्सा की मिला जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है वहां तो क्या था प्रतिपक्ष का बंध था किसने पुरुषवेद और हास्यादि ने या भय कषाय और भय और जुगुप्सा तो निरंतर बनती है ध्रुव बंदी प्रकृति और 12 कषाय भी यहाँ बंधेगी इसलिए उसमें कोई बीच में अंतर
जघन्य पहले समय होगा
हाँ पहले समय में होगा बाद में दोबारा जघन्य भी नहीं होगा और अजघन्य में अंतर भी नहीं होगा सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है क्योंकि वो सारे क्षपित कर्मांशी को सारी कंडीशंस पूरे करके आने वाला जीव चाहिए
खुद वेलना कर रहा है वो जीव का
हाँ उसका भी हमने देखा था नारकियों में उसका काल अभी हमने कहा 18 पृष्ठ पर देखा था ना जघन्य का एक समय वो अनुत्कृष्ट के समान उन्होंने घटित किया था वहां स्वामित्व तो नहीं दिया है उन्होंने नारकियों में जो अभी हम 386 में देखा था आदेश से नारकियों में 389 पर देखो सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म किसके होता है जो अन्यतर क्षपित कर्मांशिक जीव मिथ्यात्व में गया दीर्घ उद्वेलना के द्वारा उद्वेलना करता हुआ नारकियों में उत्पन्न हुआ और दो समय काल प्रमाण स्थिति वाली एक स्थिति के शेष रहने पर जघन्य प्रदेश सत्कर्म होता है हाँ 389 में नीचे से 3, 3, 6, 3, 9 और 10 10, 11
दीर्घ
उद्वेलना द्वारा हाँ दीर्घ उद्वेलना उसके ऊपर वो समय समय मिथ्यात्व की बात है मैंने क्षपित विधि से आया है मिथ्यात्व में गया और उद्वेलना काल भी जघन्य उत्कृष्ट अलग अलग हो गए तो उसमें दीर्घ उद्वेलना वाला ले लिया है
यहाँ पे उद्वेलना करता हुआ जीव की कभी भी हो सकती है, वो सफेद कर्णों से रूप होकर आया है और उद्वेलना यहाँ पे पहले पूरा करेगा, अंत में पूरा करेगा, आगे जाके भी पल्ले
कर सकता है, कभी भी करेगा, परंतु दीर्घ काल लिया है उसका। दो बातें लेना, शपित कर्मांशिक और दीर्घ उद्वेलना, उसका अंतिम समय।
हाँ,
प्रदेश विभक्ति। हाँ, उद्वेलना कभी भी शुरू करता है और कभी भी कर सकता है, नारके में आने के बाद भी
या पहले लेके आया है, कभी भी और उद्वेलना चालू कर
दिया। क्या प्रश्न है आपका? हाँ, यहाँ पेज 389 छठी पुस्तक की। अब हम सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का अजघन्य देख रहे हैं। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है। देखो, जिसने जघन्य क्षपित कर्मांशिक वाला नहीं है, कोई अन्य है, और उसका उद्वेलना का अंतिम समय है, तो उसको अजघन्य रहेगा। क्षपित वाला है, उसके उद्वेलना के अंतिम समय में जघन्य होता है। कोई भी ऑर्डिनरी जीव है, वो उद्वेलना कर रहा है, तो उसके अंतिम समय में अजघन्य होगा। फिर एक समय के लिए सत्ता नहीं है और फिर सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो उसकी सत्ता फिर दोबारा तैयार होगी, तब हम क्या कहेंगे? अजघन्य का एक समय वाला है। क्या लाई बात? ऑर्डिनरी की बात करें और क्षपित कर्मांशिक के लिए अगर लेना है तो ऐसा ले सकते हैं कि उसके दो समय, दो स्थितियां बाकी है, तब उसका अजघन्य था, फिर एक समय के लिए जघन्य हुआ और तीसरे समय में समय को प्राप्त किया, यानी सत्ता नष्ट होने के बदले समय को प्राप्त हुआ, ऐसा भी घटित करेंगे हम उसको। देखो, अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33, क्योंकि हमें नारकी में रखना है उसको, अपनी गति मार्गना चल रही है नारकी की।
अजघन्य तो पूरा 33 अगर नहीं सकता है, क्योंकि 28 के सत्ता वाला जीव यहाँ पे उत्पन्न हुआ।
हाँ।
और पीछे उसने बीच में सम्यक तो प्राप्त किया, सम्यक तो के साथ रहा और अंत पे जाके मिथ्या।
आप अनंतानुबंधी में चले गए।
नहीं नहीं भैया, सम्यक्त्व की बात ही देख रहा हूँ।
अजघन्य का उत्कृष्ट अंतर कैसे घटित करेंगे?
अच्छा, एक बार सत्ता में से नष्ट होगा।
देखो, अन्य बहुत से आया है, उद्वेलना करते करते आया है, यहाँ एक समय, पहले समय में सत्ता थी, उद्वेलना पूरी हुई,
सत्ता में से नष्ट हो गया,
सत्ता में नष्ट हुआ, फिर जाके लास्ट में जब पॉसिबल है उसका सम्यक्त्व प्राप्ति का, यानी मिथ्यात्व में आने के पहले,
तो उत्कृष्ट अंतर में उन्होंने कुछ कम कहा, तो एक समय कम 33 अगर, अच्छा, दो समय, तीन समय।
अरे, वो तो लास्ट में कैसे वो समय को प्राप्त करेगा? सातवें नरक में नियम क्या है? मिथ्यात्व में जाता है, आयु का बंध करता है, फिर अंतर्मूर्त विभाग मरता है।
नहीं नहीं, इसमें क्या है कि कहीं वो कुछ काल पहले उसने समय को प्राप्त किया, वापस मिथ्यात्व में गया, तो सत्ता तो बनी रहेगी अंत तक।
समय को प्राप्त करते ही सत्ता आ गई, वो अजगण्य हो गया उसका।
वही मैं बता रहा हूँ।
हाँ, तो
पहले एक समय
मिथ्यात्व में जाता है कि नहीं जाता है, वो हमारे देखने की क्या जरूरत है? हाँ। हमारा अंतर कहाँ समाप्त होता है? सम्यक को प्राप्त करते ही अंतर समाप्त हुआ। हाँ। आप दोनों का घोटाला कर रहे हो, अनंतानुबंधी की भी बात सोच रहे हैं और इसकी भी कर रहे हैं। देखो, पहले उद्वेलना करते करते आया है, नारकी में जन्म होते एक समय में उद्वेलना पूरी हुई, उद्वेलना करने के लिए वो विग्रह गति में है क्या? अभी वो भाव धारण किया क्या? पर्याप्ति पूरी, उससे कोई लेना देना है ही नहीं है, तो उसका अंतर चालू हो गया उद्वेलना
और होते ही जाके वापस तो प्राप्त
किया। अंतर मूर्त जब आयु बंधने के पहले, क्योंकि मिथ्यात्व में आयु का बंध होता है, तो लास्ट में जब पॉसिबल है तब उसने सम्यक तो प्राप्त किया,
वापस मिथ्यात्व में
गया की कहने की क्या जरूरत है? सम्यक्त प्राप्त होते ही उसकी सत्ता हो गई, यानी हमारा विषय वहीं समाप्त होता है, वो आगे जाएगा, मिथ्यात्व में जाएगा, वो सब बातें होने वाली ही है, परंतु हमें अंतर कब समाप्त होता है? सम्यक तो प्राप्त करते ही उसकी सत्ता आ गई, तो हमारा अंतर जो चल रहा था वो समाप्त हो गया। ख्याल में आई बात? हाँ, एक समय के लिए सत्ता थी, खत्म हो गई।
नहीं, पीछे
आयु के अंत में, 33 सागर के अंत में एक अंतर्मुख छोड़ दो आप, उसके पहले उसने समय को प्राप्त किया। गिर गया वो तो गिरेगा ही, परंतु वो कहने की जरूरत क्या है मेरा कहना, क्योंकि समय मिथ्यात्व और सम्यक्त की प्रक्रिया वो तैयार होगी वहां पर। यानी हमारा जो अंतर चल रहा था, सत्ता थी नहीं, वो सत्ता आ गई, तो अपना अंतर समाप्त हुआ। फिर वो तो गिरने ही वाला है, और फिर मिथ्यात्व में आयु बंद करने ही वाला है, वो तो बाकी निश्चित है आगे की बात। ये तो सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व की बात हुई। हाँ, अभी हम अनंतानुबंधी की देखें। अनंतानुबंधी चतुष्क की, जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतर काल नहीं है। अनंतानुबंधी में भी यही बात है कि क्षपित कर्मौषिक विधि से आना चाहिए था, तो उसमें भी नारकियों के लिए जघन्य कर भी लिया है, तो दोबारा जघन्य नहीं करेगा। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अजघन्य का कैसे? विसर्जना की, उसके अंतर समय में सत्ता थी यानी अजघन्यता, फिर सत्ता नष्ट हुई, अंतर्मूर्त में फिर सम्यक को प्राप्त करके, सॉरी मिथ्यात्व में गया तो संयोजना हो गई। हमें तो संयोजना की बात है। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर है,
पहले भी संयोजना थी।
आपको बताना ये कुछ कम 33 सागर कैसा होगा? हाँ, फिर से मिथ्यात्व में गया, हाँ, तो संयोजना हो गई। पहले आते ही सादी मिथ्या दृष्टि हो, या कोई विषम्य को प्राप्त किया है, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, तो अंतर चालू हो गया, सम्यक दृष्टि ही रहा थ्रू आउट, और लास्ट में जब मिथ्यात्व में गया तो फिर संयोजना हो गई। अजघन्य था फिर अजघन्य हुआ, तो यह अजघन्य का अंतर होता है। इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें हमने सातवीं पृथ्वी की अपेक्षा ही घटित की, वहीं पर घटित होती है। विशेषार्थ, नरक आदि चारों गतियों में सब प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति क्षपित कर्मांशिक जीव के होने के कारण प्रत्येक में दो बार संभव नहीं है। ये बात मुख्य है। क्योंकि क्षपित सारी पूरी विधि दोबारा नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देखा क्षपित में असंख्यात बार सम्यक, संयमा संयम, बहुत बार संयम, चार बार उपशमाया, तो ये तो फिर दोबारा हो नहीं सकता है। हाँ, कहीं भी नहीं होगा, इसलिए चारों गति में कहीं भी नहीं होगा। क्षपित कर्मांशिक विधि तो एक बार हो सकती है, इसलिए सर्वत्र इसके अंतरकाल का निषेध किया है। क्षपित की कंडीशन, हाँ, सब लेना, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक में सबको छुपाया है ना, उसमें इतनी बार संयम वगैरह धारण किया है, संयमा संयम धारण किया, तो गुणश्रेणी भी हुई है उसकी, चार बार उपशमाने का कार्य तो एक चार बार ही होता है ना उसकी, ऐसी बात नहीं है। फिर क्षपित नहीं होगा, फिर वो तो शायी कहने क्षपक श्रेणी मान सकता है, परंतु तो अभी इतने असंख्यात बार तो कोई उसके सवाल ही नहीं होने का, जितने बार मैक्सिमम है उसने कर चुका है वो, अभी इतना उसका कम कर्म जो है क्षपित कर्म
ये चार संयोजन के लिए हम लोग को सीढ़ी में नहीं चढ़ाना है, उसके पहले उसको क्षपित कर्म रूप से जो क्षपित कर रहा है श्रेणी के चढ़ने से पहले उसका मरण हो जाएगा, और कन्य गति में जाएगा तो उसका पहले कर्म हो जाएगा।
क्या
चार संजलन में?
हाँ।
क्योंकि जो क्षपित, अरे श्रेणी चढ़ेगा तो गुण संक्रमण हो जाएगा
वो लोभ में।
लोभ में चारों संतुलन में होगा ना।
हाँ, लोभ में मुख्यता लिया है।
हाँ,
मुख्यता लोभ।
तो यहाँ पे जो ये चार संतुलन की बात नहीं ले सकते क्योंकि उसका तो उसके पहले कम हो जाएगा।
उसका अगर ओग में जघन्य तो हम क्षपक श्रेणी में ही देखते हैं।
हाँ, नहीं ये अन्य गति
का सवाल नहीं यहाँ पर।
अन्य गति
में भी चारों कषायों का भी जो है वो अपना अपना उसकी गुण श्रेणी होती ही है। क्षपित कर्मांशिक वो पुनः दोबारा नहीं होगा, इतनी बात लेनी। तो सब प्रकृतियों की लिखा ना,
हाँ।
चारों गतियों में सब प्रकृतियों। अब तीसरी लाइन, अजघन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का विचार करने पर नारकियों में मिथ्यात्व आदि आठ प्रकृतियों की जघन्य प्रदेश विभक्ति वहां उत्पन्न होने के बाद अंतर्मूर्त काल जाने पर संभव है। अब यहाँ उन्होंने ये जो अटपटा है ना विशेषार्थ में बताया है, कुछ अटपटा लगता है ये। तो हमने जो पुरुष वेद और अन्य चार उसको तो अंतर्मूर्त के बाद देखा था हमने।
स्त्री वेद में भी ऐसे देखा, स्त्री नपुंसक वेद में
नपुंसक वेद में
अंतर्मूर्त पश्चात होगा तो उत्पन्न होने
अन्य नरकों में। परंतु यहाँ स्त्री वेद नपुंसक वेद और मिथ्यात्व के लिए हमने 33 सागर के लास्ट में देखा था।
हाँ।
अन्य नरकों में तो हो सकता है, अन्य नरकों में भी मिथ्यात्व का पहले समय में होगा, अंतर्मूर्त के बाद नहीं होगा। मिथ्यात्व का जो जघन्य बताया है अन्य नरकों में पहले दूसरी तीसरे में, तो पहले समय में मिथ्यात्व का जघन्य होगा। मिथ्यात्व 16 कषाय का पहले समय में जघन्य होगा। 12 कषाय ले लो, अनंतानुबंधी को अलग रखो।
अन्य नरकों में मिथ्यात्व सभी कर्मांशिक जीव जब भी उत्पन्न होता है उसके पश्चात वो सम्यक्त्व प्राप्त करके अंत में नहीं होगा।
पर यहाँ पहले समय में लिखा ना उत्पन्न होने के बाद अंतर्मूर्त जो लिखा है वो घटित नहीं हो रहा है, मुझे ये कहना है। इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय कहा है। यानी ये जो रीजनिंग दिया है ना उन्होंने एक समय वाला, हमने अभी जो देखा था मिथ्यात्व और दो वेदों में तो हमने सातवें नरक के अंत में देखा, एक अंतर्मूर्त पहले। पुरुष वेद और हास्यादि चार इनके इनमें तो शुरू में देखा, अंतर्मूर्त बाद। पुरुष वेद, हास्य रति, अरति, शोक, ये पांच और वो तीन, ये आठ हो गए सब मिलकर। तो आठों में रीजनिंग या स्वामित्व अलग अलग। यहाँ मिथ्यात्व आदि आठ लिखा ना, नहीं परंतु ये होता ही नहीं है। मिथ्यात्व आदि आठ के लिए हाँ मिथ्यात्व वो निकाल के पुरुष वेद आदि पांच लिखना पड़ेगा, और मिथ्यात्व आदि जो तीन है मिथ्यात्व, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, वो जाके लास्ट में सातवें नरक के अंतर्मूर्त पहले।
ये सातवें नरक के अलावा जो सपित कर्मों से उत्पन्न होता है, अच्छा वहाँ पे सम्यक
उसमें भी ऐसा कर सकते हैं हम, परंतु वो भी अंत में ही होगा ना। जैसे सातवें में हमने घटित किया है, यहाँ हम आदेश में नरक गति इन जनरल जहाँ मिनिमम है वहीं पर घटित करेंगे। ऊपर के नरकों की बात करेंगे तो वहाँ अलग कथन होगा।
हाँ, पहले दूसरे तीसरे नरक में तो सम्यक रूप से उत्पन्न हो सकता है, नहीं पहले नरक में ही खाली, बाकी सभी नरक में इसे लेने का है कि सम्यक प्राप्त।
वहाँ तो अंतर ही नहीं कहेंगे, वहाँ तो अंतर ही
नहीं जगन्य कभी होगा।
जगन्य फिर आयु के अंत में करो उसको,
मिथ्यात्व में उत्पन्न
हुआ सम्यक तो ही रखो ना उसको, मिथ्यात्व में क्यों रखो। क्षपित कर्मांशिक आया है।
हाँ, पहले और पहले दूसरे तीसरे पहले में तो बात ही अलग हो जाएगी।
क्यों पहले में क्यों अलग होगी?
तो सभी नरक में इसे लेना है मिथ्यात्व में उत्पन्न हुआ है,
मिथ्यात्व में उत्पन्न हुआ, क्षपित कर्मोशिक से आया है, मिथ्यात्व में उत्पन्न हुआ है और लिए सम्यक तो प्राप्त किया है, लंबी आयु से आया है और सम्यक भी ही रहा, मिथ्यात्व हुआ ही नहीं है, तो आयु के अंत में उसका जगन्य होगा कि नहीं होगा। यहाँ इन जनरल सबकी बात कर रहे, इसलिए लंबे में लंबी आयु 33 सागर की होती है। उसने उतना खपाया ना उसके, जब तक समय को चालू रहा उसका, और उसके और भी विसर्जना भी कराओ तो और खिपेगा उसका। यहाँ कौन से नरक की बात नहीं, यहाँ नरक इन जनरल बात चल रही, सातों नरकों में जहाँ जगन्य है उसी को यहाँ कहेंगे। तो यह विशेषार्थ में उन्होंने सबको इकट्ठा एक ग्रुप में बताकर अंतर्मूर्तवाद होता है, ये जो लिखा है ये तो स्टेटमेंट गलत है। पुरुष वेद आदि 5 लिखो वहाँ, और मिथ्यात्व त्रिवेद नपुसक वेद का तो नारकी के अंतर्मूर्त पहले लास्ट जो हमने पहले अभी देखा था, उसका एक्सप्लेनेशन अभी हमने 32 पृष्ठ पर लास्ट में देखा था। देखो यहाँ तो उत्पन्न होने के बाद अंतर्मूर्त काल जाने पर संभव है जो लिखा है ना, वो तो पुरुष वेद
हाशिरति अरति
आदि 5 चौथी लाइन की स्टार्ट में मिथ्यात्व आदि 8 लिखा है, आदि 8 ना, मिथ्यात्व लेना ही नहीं वहाँ पर, मिथ्यात्व आदि 8 निकाल लो और पुरुष वेद आदि 5 लिखो। और संभव है कि बाद एक मिनट, इसलिए सर्वत्र संभव है वहां लिखो आप एडिशन में मिथ्यात्व त्रिवेद पुरुष वेद, सॉरी त्रिवेद नपुसक वेद, मिथ्यात्व और 2 वेद
संभव है के बाद,
हाँ साइड में लिखना मिथ्यात्व 2 वेद यानी स्त्री और नपुसक वेद। सातवें नरक में अंतर्मूर्त पहले लास्ट में, सातवें नरक में आयु के अंतर्मूर्त पहले, क्या मरण के अंतर्मूर्त पहले, हाँ हाँ सातवें नरक में। देखो 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 मैं फिर पढ़ती हूँ चौथी लाइन, पुरुष वेद आदि 5 आगे वही सा ही लिखना, प्रकृतियों की जगन्य प्रदेश विभक्ति वहाँ उत्पन्न होने के बाद अंतर्मूर्त काल जाने पर संभव है, इसके आगे मिथ्यात्व स्त्रीवेद नपुसक वेद सातवें नरक में
मरण के अंतर्मूर्त पहले,
मरण के अंतर्मूर्त पहले
और बाकी के नरक में अंत में ही होगा,
हाँ अंतर्मूर्त पहले, हाँ सम्यक्व के अंतिम समय में। जगन्य है फिर इसको पढ़ती हूँ मैं, पुरुष वेद हास्य रति अरति शोक
आदि 5
ये तो नरक में उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त पश्चात जगन्य होता है ना, संभव है किसके जो क्षपित से आया है, और मिथ्यात्व स्त्रीवेद और नपुसक वेद में कब संभव है,
सातवें नरक में अंतर मरण के अंतर्मूर्त
कर्मोशिक से आया है, सातवें नरक में आया है, आते अंतर्मूर्त समय पर प्राप्त किया है, पूरे सम्यक दृष्टि रहा और जब मिथ्यात्व में लास्ट आया तो सम्यक्त्व में रहने का अंतिम समय, वहाँ मिथ्यात्व का जगन्य, मिथ्यात्व में गया और अंतर्मूर्त बीत गया तब स्त्रीवेद और नपुसक वेद का जगन्य,
और बाकी
फिर भी उसके बाद एक अंतर्मूर्त बाकी रहता है,
और बाकी के 6 नरक में अंत में ले सकते
हैं, बाकी के 6 नरकों में क्योंकि वहाँ तो मिथ्यात्व में आने का कोई
सवाल नहीं है,
जरूरी नहीं है, तो आयु के अंत में सम्यक दृष्टि रहा है
तीनों का साथ में लेगा,
हाथीनों का साथ दिया, मिथ्यात्व और दो वेद
श्रीगंध पुरुषत्व।
किसमें? नहीं नहीं, छह नरकों में तो अलग रखना, पांच और तीन अलग ही रखना। हाँ, इसलिए बरोबर है, यानी अंतिम समय में जघन्य है, ऐसा लिखो, अंतिम समय में जघन्य है, इसलिए जघन्य है, यानी मिथ्यात्व के बारे में हम स्टेटमेंट कर रहे हैं, मिथ्यात्व स्त्रीवेद पुरुषवेद सातवें नरक के अंतिम समय में जघन्य है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है। एक समय के लिए जघन्य हुआ तो अजघन्य का अंतर एक समय हुआ। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व ये दो उद्वेलना प्रकृतियां हैं और अनंतानुबंधी चतुष्कर विसंयोजना प्रकृतियां हैं, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल बन जाने से उसका अलग से निर्देश किया है। तो ये तो हमने मूल में देखा ही है, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में तो अजघन्य का अंतर एक समय होता है और इसका अजघन्य का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त होता है, क्योंकि विसंयोजना तो अंतर्मूर्त तक तो रहेगी, बाद में संयोजना होगी।
और उत्कृष्ट कुछ कम
ख्याल में आई बात? हाँ, इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का हम बताया, अंतरकाल को आगे भी इसी आधार से घटित कर लेना चाहिए।
कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण उत्कृष्ट अंतर,
हाँ, मात्र सर्वत्र जघन्य अंतरकाल तो एक समान है, जघन्य अंतर सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के लिए एक समय और उसके लिए अंतर्मूल, उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण होता है, यानी अजघन्य का जघन्य अंतर एक समय, सॉरी एक समय सम्यक सम्यक मिथ्यात्व में, अंतर्मूर्त अनंतानुबंधी में, अजघन्य का अंतर क्योंकि वहां प्रकृति नष्ट होती है उस हिसाब से लेना है, और उत्कृष्ट अंतर अपनी पूरी स्थिति में से कुछ कम करो, केवल अनंतानुबंधी चतुष्कर की अपेक्षा तिर्यंच और मनुष्यों में वह कुछ कम तीन पल्ले ही कहना चाहिए। क्योंकि एक लंबी आयु लेना ना उनकी, यहाँ बारह कषाय भय और जुगुप्सा की जघन्य प्रदेश विभक्ति भव के प्रथम समय में होती है, क्योंकि उसमें अंतर्मूर्त प्रतिपक्ष का बंध है वो तो कोई बात ही नहीं है, वो तो ध्रुव बंदी है, हर समय बंधी रही है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का भी निषेध किया है। सातवीं पृथ्वी में यह प्ररूपणा अविकल बन जाती है, इसलिए उनमें सामान्य नारकियों के समान जानने की सूचना की है।
ये पहले छह पृथ्वी की बात नीचे है अलग से
बताएंगे, अभी तो हमने नरक गति इन जनरल बात की, अब नरक गति का जो सामान्य नारकियों में जो कथन है वही सातवीं नरक में भी घटित होता है, अन्यथा क्या करते हैं, पहली छह पृथ्वियों को अलग बताते और फिर दोबारा सातवीं नरक की बात करते हैं। यहाँ सामान्य बताया और जो अभी उसके विशेष बताने हैं उसमें सातवीं नरक का ऐसा ही ऐसा बता दिया, अब रहे पहले से छठवीं नरक तक। प्रथम से छठी पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व बारह कषाय स्त्रीवेद नपुसकवेद भय और जुगुप्सा की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। ना अभी हमने जैसे ऊपर देखा था मिथ्यात्व स्त्रीवेद नपुसकवेद तो अंतिम समय में ही होगा, क्षपित कर्मौशिक से आया है, उत्पन्न होने पर सम्यक तो प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की भी विसंयोजना की, और सम्यक दृष्टि ही रहा तो अंतिम समय में उसका मिथ्यात्व जगने होगा, बाकी का यहां उत्पन्न होने के पहले समय। बाकी का यानी इसमें ये छोड़ दिए पुरुष वेद और चार, उनको नहीं लिया है, वो तो अंतर्मूर्तवाद होते हैं, तो उनमें तो एक समय वाली बात करेंगे, जगन्य एक समय है तो अजगन्य का अंतर एक समय होगा। इस लिस्ट में किसको नहीं लिया, देखो पहले से छठी पृथ्वी तक के नारकियों में मिथ्यात्व 12 कषाय यानी चार कषाय छोड़े, स्त्रीवेद नपुसक वेद लिया यानी पुरुष वेद को नहीं लिया, वैजगुप्स का लिया यानी हास्यरति अरति शोक को नहीं लिया, यानी वो पांच की बात बाद में करेंगे। और अनंतानंदी समय समय मिथ्यात्व का तो उसका तो अलग ही रूल होता है, वो तो अलग से कथन हर जगह होता ही है, पर अभी जो इकट्ठा सब लिया है ना कि उनके जगन्य एक समय के लिए होता है परंतु उसका अंतर नहीं होता अजगन्य का, ये स्टेटमेंट तो इन सब के लिए कॉमन है, परंतु उनका स्वामित्व कहां पर जगन्य होता है तो कितने प्रकृतियों में पहले समय में होगा और कितने अंत समय में होगा। जैसे सातवें नरक में हमने मिथ्यात्व स्त्रीवेद और नपुसक वेद को लास्ट में अंतर्मूर्त बाकी रख के वहां पर जगन्य देखा था, क्योंकि वहां तो कंडीशन आवश्यक थी कि तो मिथ्यात्व में ही जाता है और फिर आयु बंद करके मरण करता है, अन्य नरकों में तो ये कोई आवश्यक नहीं है उसके, तो वो सम्यक दृष्टि ही रहता है अंत समय तक, तो अंतिम समय में मिथ्यात्व नपुसक वेद स्त्रीवेद जगन्य होगा। बाकी जो कौन से बचे हैं, 12 कषाय नहीं उसकी बात नहीं, इसको इसमें जो लिए हैं उसकी उसकी बात कर रही, उसमें से 12 कषाय भय और जुगुप्सा वो पहले समय में होगी, अपने अपने नरक में पहले समय में, क्योंकि अभी पहले से छठी पृथ्वी तक की बात चल रही है, तो हरेक का अपना अपना काल जो है अलग अलग है, परंतु पहले समय में ये बात तो निश्चित होती है। अभी सम्यक्त्व सम्यक् मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वो जो हमने देखा था वही कंडीशन सब जगह रहेगी, क्षपित कर्मांशिक आया है दीर्घ उद्वेलना के द्वारा आता है वगैरह करता है वो तो उसके जगन्य होगा, परंतु एक बार जगन्य ऊपर दोबारा तो हो ही नहीं सकता, किसी भी प्रकृति का नहीं हो सकता ना, हमने देखा था। अजगन्य प्रदेश विभक्ति का जगन्य अंतर क्रम से एक समय, क्रम से ने सम्यक सम्यक मिथ्यात्व के लिए एक समय उद्वेलना की बात, और अंतर्मूर्त क्योंकि विसंयोजना के बाद अंतर्मूर्त रहकर ही संयोजना होती है, तथा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, पांच नौ कषाय। अभी इसमें कौन नौ कषाय है सर, जयबेन हाँ पुरुष वेद और हास्यादि चार ऊपर जो नहीं लिए थे, उनके जगन्य प्रदेश विभक्ति का अंतर का नहीं, जगन्य का तो अंतर नहीं है परंतु जगन्य अंतर्मूर्त के बाद होता है,
तो एक समय जन्म के
तो अजगन्य का एक समय होगा ना, अजगन्य प्रदेश विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है, ये ऐसा क्यों कहा ये हमको देखना है मात्र, याद तो रहेगा भी नहीं फिर भी जब हम पढ़ रहे हैं तो ये क्यों कहा उसका रीजनिंग क्या है इतना हमको समझ लेना। आगे बढ़ेंगे विशेषण। प्रथमादि छह पृथ्वियों में मिथ्यात्व स्त्रीवेद और नपुसक वेद की नरक से निकलने के अंतिम समय में, देखो ये बात आई हमने तो सातवें नरक में देखा था, परंतु वहां तो मिथ्यात्व में आना अनिवार्य था,
अंतर्मूर्ति ले
यहाँ तो लाना ही नहीं, मिथ्यात्व में समय दृष्टि ही रखना है, और शेष की
नरक
में उत्पन्न होने के पहले समय में, शेष में कौन से लेना, हाँ लक्ष्मी बेन शेष में कौन कौन जरा पहला पेज दिखाना उनको, हाँ 12 कषाय और
पंचकोपसा
और
नहीं
त्रिवेद नपुंसक वेद लास्ट में आया, मिथ्यात्व के साथ रखा उसको। यानी यहाँ किसको लेना, बारह कसाय
बैजुगुप्सा,
बैजुगुप्सा ये बाकी में आ गए। शेष शेष लिखा है ना यहाँ पर, शेष किए ने बारह कसाय बैजुगुप्सा। नरक में उत्पन्न होने के पहले समय में जघन्य प्रदेश विभक्ति होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का निषेध किया है, विभक्ति हुआ है विभक्ति। ये हिंदी में तो किसी व को ब ही करते, ब को व करते हैं। तथा शेष पांच नौ कषायों की, ये तो हमने देखा पुरुष वेद और हास्यादि चार, जघन्य प्रदेश विभक्ति का स्वामी सामान्य नारकियों के समान है, यानी अंतर्मूर्त बीतने पर, जन्म के या अंतर्मूर्त बाद। क्यों? प्रतिपक्ष का बंध कर रहा है इसलिए। इसलिए यहाँ इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय संभव होने से वह उक्त काल प्रमाण कहाँ है। अब तिर्यंच गति में ये तीर्थंच दिखता है, तीर्थंच हुआ है, तीर्थंचों में हाँ दोनों जगह तिर्यंच करना, यो करना यो। तिर्यंच गति में तिर्यंचों में मिथ्यात्व बारह कषाय त्रिवेद नपुसक वेद भय और जुगुप्सा की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भंग ओग के समान है। अनंतानुबंधी चतुष्क की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि उसमें तो क्षपित कर्मवशी की कंडीशन लगती है। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है विसंयोजना पर, संयोजना होने पर। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तीन पल्ले है, क्योंकि एक ही भाव चालू रखना है सम्यक के साथ। पांच नौ कषायों की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है।
यहाँ पे भी अंतर्मूर्त पश्चाती लेना पड़ेगा,
पश्चाती नहीं परंतु अंतर, जघन्य का अंतर नहीं है। अजघन्य का कहेंगे, अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। इसी प्रकार पंचेन्द्रिय तिर्यंच त्रिक में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इनमें सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। क्योंकि वो उसमें कंडीशन लगी ना,
एक ही बार होगा
कि क्षपित कर्मांशिक से आया है और दीर्घ उद्वेलना काल में उद्वेलना की। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य अंतर एक समय है। इन्हें एक समय के लिए उद्वेलना रही, सत्ता नहीं रही और फिर समय को प्राप्त। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी स्थिति प्रमाण है।
यहाँ पे ये 95 प्लस
ने पंचेंद्रिय त्रिक की बात चल रही थी। हाँ। तो उसमें अपनी अपनी स्थिति प्रमाण, तीनों में अलग अलग, एक तो सामान्य पंचेंद्रिय में अलग 95 प्लस तीन पल्ले
उसमें
और पर्याप्त तिर्यंच पंचेंद्रिय है
31 प्लस
और अरियोनिमत। पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। क्योंकि क्षपित करके इसमें आए हैं तो पहले समय में जघन्य होगा, जैसे तिर्यंचों में नारकियों में मिथ्यात्व में आयु के अंत में ले जाते हैं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि सम्यक को प्राप्त करा के फिर हमको मिथ्यात्व को छिपाना है। और यहाँ तो उसकी कोई चांस ही नहीं, उसका तिर्यंच अपर्याप्त है तो यहाँ कोई सम्यक तो प्राप्त नहीं करेगा। तो जो कुछ लेके आया है वो पहले समय में घटित होगा। सात नौ कषायों की जघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल एक समय है। ये सात अनुकषायन के इसलिए कि उसके जो
अंतर्मुख पश्चात
बंद अलग दूसरे प्रतिपक्ष का बंद होता है इसलिए लिया। विशेषण तिर्यंचों में मिथ्यात्व स्त्रीवेद और नपुसक वेद का जघन्य प्रदेश सत्कर्म तीन पल्ले की आयु के अंतिम समय में संभव है, जैसे हमने वहां नारकी में देखा था। बारह कषाय भय और जुगुप्सा का जघन्य प्रदेश सत्कर्म तिर्यंच पर्याय ग्रहण करने के पहले समय में संभव है।
ये तीन पल्ले के आयु वाले में चौथा गुण स्थान होता है और जो शपित कर्मांशिक रूप से जो कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ है और पांचवा गुण स्थान प्राप्त करता है उसकी तो गुण श्रेणी नहीं बेचारा चलती रहती है।
हाँ।
तो वहाँ पे
नहीं नहीं बोलने दो उनको। हाँ।
तो वहाँ पे उसका कम नहीं हो जाएगा?
देखो आपका ऐसा प्रश्न है ना, हमने तो तीन पल्ले वाला लिया है।
हाँ।
आप कहते
वहाँ पे चौथा गुण स्थान भी।
हाँ।
और कर्मभूमि में पांचवा गुण स्थान प्राप्त,
कर्मभूमि की आयु
एक कोटि पूर्व वाली है पर वहाँ पे भी ये शपित कर्म से उत्पन्न हो सकता है।
एक पूर्व कोटि कहाँ और वहाँ तीन पल्ले कहाँ?
देखो शपित कर्म से जो एक पूर्व कोटि वाले आयु में उत्पन्न हुआ है और निरंतर पांचवें गुणस्थान के साथ रहेगा तो उसकी तो गुण श्रेणी जरा कितनी
कितनी होगी? करोड़ पूर्व कहाँ और वो पल्ले कहाँ?
क्योंकि ये पांचवें गुणस्थान में गुणश्रेणी जरा निरंतर चलेगी।
हाँ, निरंतर चलने दो ना, फिर भी उसमें बहुत अल्प उसका कितना टिपेगा उसमें, और यहाँ पूरा निषेक चला जाएगा, यहाँ ऊपर के कुछ अपकर्षण होके नीचे आते वही एक्स्ट्रा होगी ना। निषेक तो एक एक ही चला जाएगा, गुण श्रेणी है फिर भी ऊपर के निषेकों में द्रव्य नीचे आता है, अपकर्षण होता है और वो अधिक मात्रा में जाता है। निषेक तो हमेशा एक ही जाएगा, उदय रूप निषेक,
क्योंकि हमने ऐसा देखा है ना कि जो गुणश्रेणी निर्जरा करता है वो एक समय में असंख्यात अरे संख्यात करोड़ वर्ष की जितनी निर्जरा होती है उतने एक समय में करता है।
अज्ञानी जितना करता है उसकी बात है, अब यहाँ दोनों ही समय दृष्टि है।
हाँ। अच्छा यहाँ पे भी
दोनों ही समय दृष्टि है ना, ये चौथे वाला है उसकी भी गुण श्रेणी रूप नहीं चलेगी फिर भी उसकी निर्जरा तो चल रही है, ज्यादा चल रही है।
गुण श्रेणी तो खाली अंतर्मुख लिए होगी, पीछे तो खाली रेगुलर निषेक की जाएंगे, वहाँ पे गुण श्रेणी निर्जरा नहीं होती है।
वही तो मैं कहती हूँ।
हाँ।
गुण श्रेणी रूप से नहीं है परंतु वहाँ सामान्य रूप से भी निर्जरा चल रही है।
हाँ, तो सामान्य रूप
पहले भी उसने कुछ तो कांडक वगैरह किए थे समय।
अच्छा, तो वहाँ पे भी नीचे ज्यादा माला है।
बिल्कुल, थोड़ी ज्यादा ही होगी ना, एक भी समय प्रबद्ध लेते हैं तो तीन पल्ले में कितने समय प्रबद्ध चले जाएंगे? पूरे समय प्रबद्ध अलग बात है और अपकर्षित होकर जो एक्स्ट्रा माल उसके साथ जुड़ गया है वो अलग बात है। हमने तो देखा ना करोड़ पूर्व में संयम से भी जितना होता है फिर भी बहुत निग्लिजिबल माल चला जाता है।
हाँ।
बहुत बार हमने देखा इसमें भी। जैसे नरकों में हमने देखा था ना, मिथ्यात्व श्रीवेद नपुसक वेद तीनों को अलग निकाला, बारह कषाय भय जुगुप्सा को अलग निकाला। बारह कषाय वगैरह वो तो भव के पहले समय में, मिथ्यात्व और ये दो वेद भव के अंदर। अभी एक बड़ा भव लेना सम्यक्त्व के साथ तो तीन पल्ले वाला लिया, और फिर पुरुष वेद की बात करेंगे अभी। सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो जैसे अन्यत्र होता है वैसे यहाँ भी होगा, अनंतानुबंधी के लिए भी
अंतर्मूर्त
और कुछ कम तीन पल्ले। अब यहाँ नीचे से तीसरी लाइन में पांच नौ कषाय होंगी, यहाँ पुरुष वेद और हास्य आदि लिए। जघन्य प्रदेश विभक्ति तिर्यंचों में उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त बाद प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध के अंतिम समय में होती है।
ये बीच की दो तीन लाइन रह गई ना, ये पढ़ी हमने।
देखो फिर पढ़ते हैं। ऊपर से पांचवी लाइन लास्ट में अनंतानुबंधी चतुष्क विसंयोजना प्रकृतियां हैं, इनका सत्व कम से कम अंतर्मूर्त काल तक और अधिक से अधिक कुछ कम तीन पल्य काल तक न रहे यह संभव है। न रहने वो विषय योजना रूप से ही रहा, सम्यत्व में रहना, अनंतानुबंधी का अजघन्य घटित करना है तो सम्यक्त्व का काल सोचना। विषय योजना के बाद सम्यक दृष्टि कितने काल तक रहा तो कम से कम अंतर्मूर्त रहा, अधिक से अधिक कितने काल तक रहा,
तीन पल्ले में
कुछ कम, क्योंकि तीन पल्ले का उत्पन्न हुआ, फिर थोड़े काल में उसने समय को प्राप्त किया, फिर समय दृष्टि रहा, फिर लास्ट में जाके विषय योजना की, सॉरी संयोजना की, यानी समय को में रहने का उत्कृष्ट काल, क्योंकि हम यहाँ गति में देख रहे हैं। ओग में देखना है तो दो बार 66 सागर घुमा उसको विसर्जना करने के बाद। यह संभव इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश भक्ति का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तीन पल्य कहा, अनंतानुबंधी में अजघन्य का अंतर। पांच नौ कषाय यानी पुरुषवेद और हास्य आदि चार, उनकी जघन्य प्रदेश विभक्ति तिर्यंचों में उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त बाद प्रतिपक्ष प्रकृतियों के बंध के अंतिम समय में होती है। ये प्रतिपक्ष प्रकृतियां क्या होती है?
आरती के सामने आरती से
अभी यहाँ की बात नहीं, जनरल बात हम पूछ रहे हैं। प्रतिपक्ष प्रकृतियां क्या है और अप्रतिपक्ष प्रकृतियां क्या है?
तीन वेद में से एक का बंध होगा तो वो प्रतिपक्ष प्रकृतियां कहलाती है ना।
देख ग्रुप ऑफ प्रकृतियों में किसी एक का या दो का जो बंध होगा, देखो देखो हम ऐसा देखते हैं, एक तो जो जिनके प्रतिपक्ष ने जो हमेशा बनती है उसको कहेंगे ध्रुव प्रकृति, अनादि से बनती आ रही है। ऐसे कौन कौन सी है? ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोनी में
16 कषाय,
मिथ्यात्व
16 कषाय
और भय जुगुप्सा, वो तो हमेशा ही बंधेगी ही, वो प्रतिपक्ष इसके बदले में वो ऑप्शनल नहीं है उसका बंध। प्रतिपक्ष का बंध होता है ना ऑप्शनल है, ऐसा इसमें ऑप्शन नहीं है। किसमें? मिथ्यात्व, 16 कषाय और भय जुगुप्सा। तो ऑप्शन किसमें है? मोहनीय की कौन सी प्रकृतियों में ऑप्शन है? तीन वेदों में एक वेद और दो युगलों में एक युगल, एक आसान तरीका, तीन वेद और दो युगल हुआ ना, यानी सात प्रकृतियों में से
प्रतिपक्ष
नहीं, उदय में होता है। हम बंध की बात कर रहे हैं, भय जुगुप्सा बंध तो ध्रुव बंदी है, निरंतर बनता ही रहता है। कब तक? आठवें गुणस्थान के अंतिम भाग तक अनादि से बंध रहा है। उदय में ऑप्शन है, बंध में नहीं है, वो उदय में। अभी हम कौन सी बात देखी थी? हाँ, प्रतिपक्षी अप्रतिपक्षी की बात चल रही थी, अभी बाकी भी देख लेते हैं। अंतराय तो हमेशा ही बंधेगी, ध्रुव बंदी कहते हैं उसको, निरंतर बंदी अलग बात है, ध्रुव बंदी अलग बात है। हम कहेंगे उसका निरंतर बंद हो रहा है, परंतु उसकी डेफिनेशन अलग अलग है। ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, अंतराय है, वो चालू ही रहेगी। कब तक? जब उसकी विच्छित्ति जब तक नहीं होती बंध की तब तक। तो ज्ञानावरण की दसवें गुणस्थान तक बनती रहेगी, दर्शनावरण की
चार तो ध्रुव बंदी है।
हाँ देखो, स्थान वृद्धि आदि दूसरे गुणस्थान तक, यानी पहले और दूसरे गुणस्थान वालों के नौ के नौ का बंध होगा, भले सोता हो या जागृत हो, बंध तो नौ का है। तीसरे गुणस्थान के बाद छह का बंध होगा, दर्शनावरण
छठे गुणस्थान,
तो आठवें के पहले भाग तो वहाँ निद्रा प्रचला का बंध रुक जाएगा।
हाँ।
और बाकी जो बची चार है वो दसवें गुणस्थान तक बंधेगी, तो इसको कहेंगे वो ध्रुव बंदी है। अपनी अपनी विच्छित्ति तक निरंतर ध्रुव रूप से बनती है। हमारा यहाँ प्रयोजन मोहनीय का है, परंतु अन्य भी कौन सी है उसको देख रहे थे ना। अब अन्य में तो आप सोच सकते हैं, अगाती में तो सोच सकते हैं ना,
वेदी में एक का मंद होता है,
साताया असात्या
नाम कर्म में प्रतिपा
गोत्र में भी उच्च या नीच है, आयु तो चार में से एक बनती हो तो जाहिर ही है, उसको तो इसमें लेना ही नहीं है।
और बाकी इसमें जो ग्रुप प्रकृति है,
आयु में वो सप्रतिपक्ष में ले लेना उसको, सप्रतिपक्ष में भी फिर दो ग्रुप किए, आयु में चार में एक बनती है, वो बात सही है।
अच्छा, देव और द्वारकाय वाले तो खाली
कोई भी एक, परंतु वो तो हमेशा तो नहीं बनती है, कभी तो कभी बनेगी, हमेशा बनती है, परंतु पक्ष में से किसी एक का तो बंद होगा ही, ये अलग बात है, यानी उसको वो ग्रुप अलग बनाया, क्योंकि आयु बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी, आहार भी बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी, इस तरह ये प्रकृतियां अलग ही है। ध्रुव बंदी में और भी हम ज्ञानावरण दर्शनार अंतराय मोनिया देखे ना, उसमें भी जो है नाम कर्म की भी कुछ ध्रुव बंदी है,
कुछ
तेजस है, कारमान है,
तेजस कारमान
स्पर्श रस गंध वर्ण है, अगुरु लघु उपघात है, निर्माण है, ये तो ध्रुव बंदी है। और प्रतिपक्ष में अभी नाम कर्म में आप सोच सकते हैं, गति चार गति में से एक गति तो बंधेगी ही, बंधेगी ही, ऐसा नहीं कि गति नहीं बंध रही हो, आयु कभी कभी बनती है, गति का बंध तो हर समय चल रहा है, अभी नर पहले गुणस्थान में चार में से बंधेगी, दूसरे गुणस्थान में तीन में से बंधेगी,
तीसरे में दो में से,
इस तरह से तीसरे के लिए, फिर
देव के लिए दो में
देव
से,
के लिए और नारी के लिए अलग अलग कंडीशन से, परंतु गति तो बंधेगी कब तक, आठवें गुणस्थान तक, ये ऐसे बंधने के ऑप्शंस जो है
हमेशा बंधती,
हाँ गति हमेशा बंधती,
आयु कभी कभी,
और आयु के समय गति भी बंध रही है, तो उस गति संबंधी आयु बंधेगी।
देव गति के साथ स्वनन नहीं बंधेगा, क्योंकि स्वनन
देखो वो बात अलग है, अभी आप वो किसके साथ कौन सा बनता है वो नाम कर्म के पैकेज आते हैं मेरी भाषा में। देव गति बन रही है तो कौन सा पंचेंद्रिय जाति बंधेगी, त्रस्त नाम कर्म बंधेगा, पर्याप्त बंधेगा, फिर उसके साथ सहनन नहीं बंधेगा, संस्थान एकमात्र बंधेगा, समय चतुरस्त्र वाला, इस तरह से 28 प्रकृतियां बंधेगी टोटल नाम कर्म की। हाँ वैक्रिय वैक्रिय बहुत सारे है ना, त्रस है, बादल है, पर्याप्त है, प्रत्येक है, वो सब बंधेगी, यानी हर एक जो कोई गति बांधता है या कोई पर्याय संबंधी बंध करता है तो उसकी सारी नाम कर्म की उसके पूरक प्रकृतियां बंधेगी। एक इंद्रियों में जो लब्ध्य पर्याप्त बनता है 23 का बंद करता है, पर्याप्त का बंद करने वाले वो 26 का करता है, आतप के साथ वगैरह ऐसे अलग अलग है। मनुष्य गति बांधता है तो उसके साथ कितने बंधेगा, तो 29 का बंद करता है, उसके साथ तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा हो तो और एक एक्स्ट्रा बंधेगी, 31 तक जाता है आरग्विक के साथ, वो मनुष्य जो बांधता है वो 31 वाला बांधता है, यानी देवगति बांध रहा है, आरग्विक बांध रहा है और तीर्थंकर भी बांध रहा है, तो 31 का बंध वो करेगा। उसके बाद ये तो कर्म थियरी में ये सारी बातें आती है, कर्मकांड में ये सब बातें आएगी, क्रम से सीखेंगे ना, नहीं तो कहाँ मन कहाँ भटकेगा, इधर उधर कहाँ लगाएंगे, यहाँ क्या कह रहे है? प्रतिपक्ष की बात हम देख रहे थे, प्रतिपक्ष में हमने मोहिनी में तो देख लिए, और बाकी जो अन्य है चार गति में से एक गति बंधेगी, पांच जाति में से एक जाति बंधेगी, उसको कहेंगे प्रतिपक्ष। नाम कर्म की 51 होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मोनी के साथ है प्रतिपक्ष वाली, और गोत्र की दो और वेदनी की दो, 7-4-11 अलग निकाले, तो 62 में से 11 गई तो 51 नाम कर्म की प्रतिपक्ष वाली होगी। जैसे चार गति है तो चार गत्यानुपूर्वी भी है, पांच जाति है, 6 संस्थान है, 6 सहनन है, तो उसमें से बंधेगी औदारिक औदारिक अंगोपांग या वैकृक वैकृक अंगोपांग, वो प्रतिपक्ष में है, आहारक को उसमें नहीं लेना है।
सात युगल है ना, क्या युगल ज्यादा है,
वो भी त्रस्थावर वो सब लेना,
स्थिर शीर्ष वर्षु
नहीं, उसमें प्रतिपक्ष नहीं लगाना।
अच्छा स्थिर
उसमें दोनों का बंद होता है ना एट ए टाइम,
दोनों का
लेना, उदय एक साथ है, बंद तो दोनों का,
सुबह दुस्वर सुबह
सब लेना,
आधे अनादे
केवल आतप उद्योत उसमें नहीं लेना है, परघात उच्छ्वास उसमें नहीं लेना है,
निर्माण नहीं लेना,
क्योंकि वो बंदेगी या नहीं भी बंदेगी, ऐसे भी प्रकृति है ना, बंदेगी या नहीं भी बंदेगी, जरूरत नहीं कि वो बंदनी ही चाहिए, जैसे आहारक आहारक अंगोपांग है, तीर्थंकर है,
मनुष्य
आयु है, परघात उच्छ्वास है, आतप उद्योत है, ये जो 11 प्रकृतियां हैं बंदेगी या नहीं भी बंदेगी, परंतु अन्य जो अभी हमने देखी ना प्रतिपक्ष वाली बंदेगी ही, तो दो पक्ष में से किसी का बंध तो होगा ही, यानी तीन ग्रुप देखे, एक ग्रुप तो ध्रुव बंदी है, अनादि से बंधा आया है, जब तक विचित्य नहीं होती तो बंधेगा, रिमेनिंग दो जो है उसमें से फिर दो दो कर
किसमें बंधे,
तो एक तो बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं भी बंधेगी, जो मैंने 11 प्रकृति अभी कही, और जो रिमेनिंग 51 इसमें 62 प्रकृतियां ऐसी है कि प्रतिपक्ष वाली है, उसमें वेदनीय की दो, गोत्र की दो, मोहनीय की सात,
और बाकी 51
और बाकी 51 है वो नाम कर्म की, उसमें जोड़ी जोड़ी वाली है, ग्रुप ग्रुप वाली ले लेना, गति है जाति है, वो विहाय गति भी कभी शुभ कभी अशुभ बंधेगी, सब जोड़ी लगा लेना उसमें। हाँ एट ए टाइम एक ही बंद होगा,
हाँ नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा,
हाँ एक केंद्रीय के साथ नहीं बंधेगा, परंतु वो तो पैकेज में जाएगा, परंतु जब बनता है तो उसमें से कोई बंधेगा, संस्थान और सहनन का है, उसमें प्रतिपक्ष में लिया है उसको, संस्थान कंपल
सहनन देवगति वाला नहीं बंधेगा, देवगति जिसका बंद हो रहा है,
वैकृत के साथ वो नहीं बंधेगा, और औदारिक के साथ बंधेगा, थोड़े कर्मों के नाम याद हो गए ना तो ये सारी बातें फिर आसान लगती है, बार बार सुनेंगे तो आसान लगेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि वो देखो बंध की और उदय की बात ख्याल में आती है ना तो पूरा मोक्ष मार्ग पूरा पहले से 14वें गुणस्थान तक साफ क्लियर हो जाता है, कहाँ किसका उदय है कहाँ किसका बंध है, बंध की अलग है और उदय की अलग है,
सत्ता की भी अलग,
सत्ता की भी अलग है, कितनी प्रकृतियां उदय रूप नहीं होती मगर सत्ता में पड़ी रहती, उदय आना बंद है सत्ता में पड़ा है, कभी कभी उदय के साथ सत्ता भी नष्ट हो जाती है, जैसे ज्ञानावरण का उदय भी नष्ट हुआ और सत्ता भी नष्ट हुई, ऐसा नहीं कि उदय मिट गया और सत्ता में पड़ा, ऐसा नहीं होता है।
85 तो 14वें गुणस्थान तक होती है, 85 प्रकृति 14वें गुणस्थान तक,
14वें, परंतु देखो
उपांत और
13वें गुणस्थान में उदय कितना क्या है,
7वें,
उदय रूप प्रकृतियां कितनी है,
नाम कर्म की
ठीक है ना, मेरा क्या पूछना है 13वें गुणस्थान में कितने प्रकृतियों का क्षय होता है, मेरा ये प्रश्न 13वें गुणस्थान में सिक्सटी थ्री का क्षय करके आया ना वो 85 है
सत्ता,
तो उसमें से कितने का क्षय करके 14वां होता है गुणस्थान, 72 का, आप क्या कहते हैं, अरविंद भाई के पास, हाँ किसी का क्षय नहीं होता 13वें में, एक भी प्रकृति का क्षय
नहीं होता है,
केवल उदय से मिट जाती है, उदय रूप थी कितने ही
उदय
में
मिट
जाता है,
और 85 का क्षय 14वें में होता है,
तो 85 की सत्ता है 13वें वाले को, 85 की सत्ता है 14वें में जाने पर भी 85 की सत्ता है, परंतु उदय रूप 12 ही रहती है, और उसमें से उपांत समय में
द्विचरम में 72 का
72 का क्षय हो जाता है
और लास्ट समय में
13 रहती है, परंतु उदय रूप तो 12 ही रहती है क्योंकि गत्यानुपूर्वी का तो उदय नहीं है और लास्ट में 13 का नाश हो जाता है।
सता में से एक और बाकी की
तो 13 प्रकृतियों का नाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है। अंतिम समय में 13 ही बचती है, उपांत समय में 85 थी उसमें से 72 चली गई, तो उतनी प्रकृतियां सत्ता में पड़ी थी उसका नाश हुआ। यानी ये क्षय करने का मैक्सिमम कार्य तो 9वें गुणस्थान में होता है, मेजॉरिटी 36 प्रकृतियों का जो कुछ वहाँ हो जाता है ना, कौन से, हाँ 9वें गुणस्थान जो हमने देखा था लब्धिसार में, शपना के अलग और उपशमना के अलग अलग प्रोसेसेस सारे अलग है उसके, तो कौन से कर्म के साथ चढ़ता है तो क्या होता है, कौन से वेद के साथ चढ़ता है तो कैसी क्षपना होती है। चलो दवला में आते हैं ना फिर, हाँ क्या है बीच में बहुत टेंशन होता है ना इसका, हाँ प्रदेश विभक्ति का आप ये अच्छा है आप सब साथ में लेके बैठते हो आप कहते आपको याद है तो हम आपके लिए जरूरत नहीं है, अच्छा है ना वो याद है, वो सही है कि नहीं वो तो कंफर्म होगा ना नहीं अच्छा है करना भी, क्योंकि क्या है विस्मरण भी होता है कभी भूल भी हो जाती है ना। ये कहाँ तक आए हम, 34 पृष्ठ पर लास्ट में ना, पंचेंद्रिय तिरियन चत्रिक में यह अंतरकाल इसी प्रकार बन जाता है, उसे सामान्य तिरियंचों के समान जानने की सूचना की है, मात्र सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की और जघन्य प्रदेश विभक्ति के उत्कृष्ट अंतरकाल में कुछ विशेषता है, इसलिए इनके अंतरकाल का निर्देश अलग से किया है। ये सामान्य तिरियंचों में अलग और यहाँ पंचेंद्रिय तिरियंच त्रिक में अलग, क्योंकि उसकी अपनी अपनी जो उत्कृष्ट स्थिति उसको ले लेना वापस। पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्तकों में मिथ्यात्व 16 कषाय भय और जुगुप्सा की जघन्य प्रदेश विभक्ति उत्पन्न होने के प्रथम समय में होती है, यानी वो ऐसा ही ना क्षपित वाला है और वो भूल चूक से अभी उल्टा जाके यहाँ उत्पन्न हुआ है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का निषेध है। सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होने के बाद यहाँ पुनः इनका सत्व संभव नहीं है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति के अंतरकाल का निषेध है, तथा शेष 7-9 कषायों की जघन्य प्रदेश विभक्ति उत्पन्न होने के अंतर्मूर्त बाद प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंद होने के अंतिम समय में होती है, इसलिए इनकी अजघन्य प्रदेश विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय कहा है। देखो अन्यत्र मिथ्यात्व के साथ त्रिवेद और नपुसक वेद को रखा था और यहाँ दोनों वेद क्या तीनों वेद और ये चार जो प्रतिपक्ष वाली प्रकृति हमने देखी मोने की साथ उसको एक साथ रखा, ऐसा क्यों? तिरियंच में नरक में हमने क्या देखा था, मिथ्यात्व के साथ स्त्री नपुसक वेद को रखा था,
जगन्य वहाँ पे अंतर्मूर्त के पश्चात
क्यों होता है, यहाँ तो अंतर्मूर्त पश्चात रहा और वहाँ तो भव के अंत में लिया,
वहाँ पे नपुसक
वहाँ उसको सम्यक दृष्टि रखा थ्रू आउट
पुरुष वेद का ही बंद करता है
और यहाँ तो
तीनों में से
ये तो क्षपित कर्मांशिक से आया है और तीनों का बंद हो रहा है उसका, दोनों में डिफरेंस क्या है? मनुष्य और मनुष्य पर्याप्तकों में मिथ्यात्व 11 कषाय और 9-9 कषायों की जघन्य और अजघन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है। अब हमें ये सोचना है मनुष्यों में जघन्य कब है, हाँ बोले
सपना के
अंदर सपना में है, 11 कषाय में किसको छोड़ा मयंक भाई,
संज्वलन लोभ
को छोड़ा, उसको क्यों छोड़ा, क्योंकि उसका जगन्य होने के बाद अजगन्य फिर होता है, इसलिए अजगन्य का अंतर कहेंगे वहां पर। सम्यक और सम्यक मिथ्या तो की जगन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, अजगन्य प्रदेश विभक्ति का जगन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले हैं। ये उसकी काय स्थिति लेना, उद्वेलना के बाद लास्ट में जाके फिर उसने सम्यक को प्राप्त किया तो अजगन्य का उत्कृष्ट अंतर होगा। भानुबेन ख्याल में आई बात, सोचना। देखो मनुष्यों के लिए किसकी बात चल रही है, सम्यक और सम्यक मिथ्या तो
उद्वेलना कर दी कोटि पूर्व का,
उसकी जगन्य कब होगी,
उद्वेलना,
दीर्घ उद्वेलना काल में उद्वेलना की है
तो उसका अंतर ही नहीं होगा,
जगन्य उसका अंतर नहीं होगा,
अजगन्य का होगा।
अजगन्य का कब होता है, उद्वेलना के बाद कितने समयों में सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो एक समय का अंतर दे के प्राप्त करेगा तो एक समय का अंतर हुआ, अधिक से अधिक कितना अंतर दे सकता है,
पूर्व कोटि प्लस तीन पर दिया,
एक भाव नहीं लेना, अभी लगातार भाव लेना, क्योंकि इसको मिथ्या दृष्टि रखना है। यदि सम्यक तो रखना है तो एक तीन पल्ले का हम ले सकते भाव। अभी हम मनुष्यों में जितने पूर्व कोटिया है और तीन पल्ले लास्ट में रखना,
सात नहीं उसमें तो सात
दो भाव नहीं,
नहीं नहीं
शुरुआत के भाव में उसने उद्वेलना की
और निरंतर मनुष्य में ही रहा,
और निरंतर मनुष्य में रहा, और तीन पल्ले के लास्ट में जाके उसने समय को प्राप्त किया। देखो इसको मिथ्यात्व में विदाउट सम्यक्त्व की सत्ता कितने काल तक रख सकते हैं, मनुष्य की बात छोड़ो, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक रह सकता है
मनुष्य में खाली,
तो यहाँ तो मिथ्या दृष्टि रखना है उसको कंटिन्यूस। हाँ बीच में अपर्याप्त नहीं, अभी सामान्य मनुष्यों में तो लेना, पहला है मनुष्य और दूसरा है मनुष्य पर्याप्त, तो दोनों के लिए अलग अलग कथन होगा।
47 प्लस तीन पल्ले, 47 पूर्व कोटि
मनुष्य सामान्य में,
47 पूर्व कोटि प्लस तीन पल्ले,
47
और 23 कोटि पूर्व
मनुष्य पर्याप्त में,
नहीं
पुरुष और नपुंसक दो ही लेना,
15 प्लस तीन पल्ले,
8 और 8 16 ही लेना, उसमें से 15 और 3
श्री वेद को छोड़ा,
पर्याप्त में नहीं लेते, पर्याप्त मनुष्यों में दो ही वेद वाले लेना और मनुष्यनी में श्री वेद वाले तीन पल्ले, क्योंकि उस कहीं तो लेते, मगर अभी बहुत बार मैंने देखा सर्वत्र, क्योंकि जैसे सामान्य मनुष्यों में सब लेते हैं वैसे पर्याप्त मनुष्यों में तीनों वेद भी ले लेते, परंतु क्षपणा की बात आती है या कहीं आती है ना तो इसको अलग निकाल के बताए उन्होंने खास। तो उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले, ये समझ में आई बात, अनंतानुबंधी चतुष्क की जगन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक एक बार ही वो जगन्य करेगा, उसके बाद दोबारा नहीं होगा। अजगन्य प्रदेश विभक्ति का जगन्य अंतर अंतर्मूर्त, जैसे अन्यत्र हमने घटाया, अंतर्मूर्त तक विसंयोजना के बाद सम्यक दृष्टि रहा और बाद में मिथ्यात्व में आया। उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तीन पल्ले, यानी उसको सम्यक्त्व के साथ रखना है,
उत्कृष्ट
तीन पल्ले वाली आयु में आया, सम्यक दृष्टि के साथ लाना है कि मिथ्यात्व के साथ,
सम्यक्त्व मिथ्यात्व में लाया, विसंयोजना की
लाया मिथ्यात्व में, सम्यक्त्व के साथ तो क्षयी सम्यक दृष्टि होगा,
तो यहाँ आने पर आया
सम्यक्त्व
प्राप्त किया विसंयोजना की,
फिर विसंयोजना करके समय दृष्टि रहा
और अंत में जाके
मिथ्यात्व में आया। लोभ संज्वलन की जगन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वो अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय में होता है। देखो क्षपणा चढ़ने के पहले अध प्रवृत्तकरण कहाँ होता है, लक्ष्मीबेन आपको पता है कौन से गुणस्थान में होता है,
सातवें के अंत,
आठवें का नाम तो अपूर्वकरण है,
सातवें के अंत,
हाँ, उसको सातिशय अप्रमत कहेंगे। देखो द्वितीय उपशम के लिए तीन करण मांडे वो अलग, तीन करण करके उसने द्वितीय उपशम कर दिया, द्वितीय उपशम हो गया उसका। अब फिर दोबारा श्रेणी के लिए तीन करण मांडेगा, उसमें अध प्रवृत्त करण तो सातवें में होगा, अपूर्व करण तो गुणस्थान ही आठवां है, अनिवृत्तिकरण गुणस्थान ही नौवां है। वहां एक एक करण के लिए एक एक गुणस्थान बताया।
यहाँ पे ये समय तो अध प्रवृत्त करण में सातवें के अंत में, सातवें के अंत में,
सातवें के अंत में लेना,
अपूर्व करण के पहले समय में,
पहले समय नहीं,
नहीं अपूर्व करण के आगे वाले समय में,
प्रीवियस उसके, अपूर्व करण श्रेणी अपूर्व करण से नहीं, उसको श्रेणी नहीं कहेंगे। हाँ, उसने सारा वो श्रेणी चढ़ने का एक करण वहां किया है, करण तो वहां से शुरू हुआ, श्रेणी का करण तो सातवें में शुरू हुआ है, श्रेणी तो आठवें से ही कहेंगे।
पर वो अध प्रवृत्त वाला तो श्रेणी तो चढ़ने वाला ही है ना,
श्रेणी चढ़ेगा ना।
हाँ।
मरेगा भी
नहीं।
मर भी सकता है,
आठवें के शुरुआत में मरण नहीं,
अध प्रवृत्त करण में मर सकता है।
हाँ, प्रवृत्त में
अपूर्व करण के पहले समय में, पहले भाग में नहीं मरता।
ये श्रेणी चढ़ने के लिए इतने अलग प्रवृत्त करण की बात कर रहे हैं।
हाँ,
और जो उच्चम समय को प्राप्त करेगा उसमें अलग प्रवृत्ति में मरण नहीं
होगा।
कौन से उच्चम समय को की बात?
पहले
प्रथम उच्चम समय को के वहाँ नहीं होते, करण लब्धि में मरण नहीं है।
तो वो अलग प्रवृत्त में करण आ गया
ना? आया ना,
वही मैं कह रहा हूँ,
यहाँ गुणस्थान की बात है। उपशम श्रेणी मान दे, केवल आठवें के पहले भाग में मरण नहीं है।
हाँ।
जो मरण के जो नियम बताए हैं,
हाँ। हाँ।
श्रेणी में शुरू में अपूर्व करण के स्टार्टिंग में, हाँ। बाकी चढ़ते समय उतरते समय सर्वत्र मरण है, परंतु जो प्रथम उपशम सम्यक तो प्राप्त करता है उसके करण लब्धि में भी नहीं है और उपशम सम्यक तो के काल में भी मरण नहीं है। वैसे द्वितीय उपशम सम्यक तो के काल में मर सकता है। हो गया ये पैराग्राफ। लोक संज्वलन की जगन्य प्रदेश विभक्ति का अंतरकाल नहीं है, अजगन्य प्रदेश विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर एक समय है। इसी प्रकार मनुष्य नियम में जानना चाहिए, यानी स्त्री वेदी वालों, इतनी विशेषता है इनमें पुरुष वेद का भंग लोभ संज्वलन के समान है, यानी अध प्रवृत्त करण के अंतिम समय में। मनुष्य अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान भंग है। अभी यहीं रुकते हैं। जावाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तकन सदा देत हो। मैं भाई।